الحمد لله على الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم صل على محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. الحمد لله اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و فضل خاص سے ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اس کا فضل ہے, ہر ایک کی قسمت میں یہ چیز نہیں. جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو یہ عنایت نصیب فرماتے ہیں. حدیث میں ہے کہ ذکر کرنے والے لوگ کبھی محروم نہیں رہتے. بہت بڑی گارنٹی اللہ کی طرف سے ذاکر کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ ایک اشکال ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے, جب ذکر آتے ہیں ذکر سیکھتے ہیں کرتے ہیں اور ایسی حدیث سنتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ میں تو محروم ہوں ابھی تک, کس لیے محروم ہے, فلاں کام میرا ابھی تک پورا نہیں ہوا, دنیا میں اتنی مصیبتیں ہم پر ہیں, فلاں پرابلم میرے ساتھ ہے, فلاں چیز میری نہیں ہو رہی. پوری ایک لسٹ ہوتی ہے آدمی کے پاس نا کہ بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے والے محروم نہیں رہتے, تو میں تو محروم ہوں. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارا, شاید ان کی سوچ ایسی ہوگی, کوئی کیا کر سکتا ہے آدمی. تو یہ ذکر کرتے ایک شیطانی بہت بڑا وسوسہ ہے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے مایوس کرتا ہے. یہ یاد رکھ, انسان کسی ایک اور صحیح راستے پہ چلتا ہے تو شیطان چھوڑتا نہیں اس کو. پہلی سٹیج جو ہوتی ہے کہ اس کے دین پہ نہیں آنے دیتا, جب وہ دین پہ چلنے لگتا ہے یہ نہیں چھوڑ دیا اس کو, پھر دوسرے طریقے سے آتا ہے. اب وہ طریقہ اس کا کیا ہے, طریقہ بدلتا ہے, طریقہ بدل جاتا ہے لیکن کام وہی وہ کر رہا ہوتا ہے. وہ اس کے دن پھر وسوسے ڈالتا ہے, اس دین کو کام کو غلط ثابت کرتا ہے, چوٹا کر کے دکھاتا ہے اور ہر طریقے سے کوشش یہ کرتا ہے کہ دل سے اس کی چیز نکل جائے کہ یار میں صحیح نہیں ہے, اور وہ اس سے دور چلا جائے. یہ اس کا ایک اور سٹیج آ جاتا ہے شیطان کا. سن لیا, یہ ہر ایک انسان پہ سٹیجز آ جاتے ہیں. تو اس میں سے یہ ایک بہت بڑا وسوسہ شیطان کا ہے. جیسے ذکر شروع کیا انہوں نے, اس کے بعد چلنے لگے, فضائل سنے ذکر کیا الحمدللہ. بہت سے لوگوں نے شکایت کرتے ہیں کہ ذکر کرنے والے شخص محروم نہیں رہے, محروم نہیں ہوتے. کہتے ہم تو محروم ہو گئے یا پہلے کاروبار چلتا تھا, اب کاروبار بھی نہیں چلتا, نوکری بھی ہماری صحیح نہیں ہے, ہمارے بچے کا یہ پرابلم ہے, بیوی کا یہ پرابلم ہے, گھر میں ایسا ہو گیا, فلاں ہو گیا. وہی وساوس پیدا کر دیتے ہیں اس کے اندر, کرتا رہتا ہے لیکن اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے. جیسے کسی آدمی کو آپ کہیں نا کہ بھائی بچے کو کہیں کہ میں تجھے یہ سویٹ دوں گا, تو جوش خروش کے ساتھ وہ کرتا ہے. اگر وہ سویٹ نہ دو تو ڈر کے ساتھ تو کرے گا, باپ کا حکم ہے, لیکن اس کو مزہ نہیں آئے گا کرنے میں. مزہ اس کو کس چیز کا, سارا سویٹ کا ہے. تو یہ حال ہمارا ہے, کرتے ہیں ڈر اللہ کے بھی, نماز پڑھ لیں یہ کر لیں, لیکن وہ کیا ہے, سویٹ والا مزہ نہیں آتا. چلو اب ذکر شروع کر دیا ہے, نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے. اب یہ بھی تو آتا ہے نا, جاتے جاتے رک جائیں گے تو یار فلاں آدمی کیا کہے گا, چلو یار بیٹھ جاتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ چاہت ختم جس لیے اس نے اللہ کا ذکر شروع کیا تھا, اسے فرق پڑتا ہے کہ پہلے اس کی کیا پوزیشن تھی. اور آہستہ آہستہ بہت عزیز بس پھر مجبوری پہ آ گیا بےچارا, کبھی آ گیا کبھی چھوڑ دیا. یہ ہوتا ہے نا, ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ شیطان کا کام ہے اس کو, بھائی میں نے پہلے اس طریقے سے روکتا تھا, اب اس طریقے سے لوگوں اس کو صاف کر کے آخر کیپچر کر لیتے ہیں انسانوں کو. ہے تو شیطان ہی, کیا وہ پتہ ہی ہے, روک لیتا. तो जो इस चीज के दाई हैं, तबलीग देने वाले लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, जो उसमें जिन्होंने जिक्र दिया है, तो वो इस चीज में आते हैं कि ये अल्लाह का गाहक बना दिया, इस गाहक को तोड़ना नहीं देना मैंने शैतान, तो वो इस पीछे पड़ जाते हैं कि शैतान अपना जोर लगाता है लेकिन उन्होंने अल्लाह का गाहक बनाया है, तो वो अपने गाहक को कैसे छोड़ने दें। तो फिर वो चार जोर लगाते हैं, बातें बताते हैं कि नहीं ये गलत बात है। तो उसमें से एक वसवसा मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत बड़ा वसवसा है। क्योंकि तो अल्लाह ने कहा है कि भाई जिक्र करने वाला महरूम नहीं रहता, हम तो महरूम हैं। अब यहाँ महरूम का मतलब ये है कि हम समझे नहीं महरूम कौन होता है, अब ये समझ हमारी समझ गलत है। महरूम का मतलब ही नहीं समझे कि महरूम है क्या, किसके बारे में ना क्या है, क्योंकि महरूम ही होता है। दुनिया में अगर मुझको अच्छा मकान ना मिले, दुनिया में कोई अच्छी नौकरी ना मिले, दुनिया में अगर कोई मेरा मसला हो जाए, कितनी देर चलता है, आखिर तो दुनिया से निकल जाता है आदमी, मसले सारे खत्म हो जाते हैं। जिसको घाट पर लेटता है ना, घाट कहते हैं ना हमारे उस चरपाई पे, जब घाट पर लेटता ना आदमी, तो फिर उसके पास कोई मशूर कोई परेशानी होती है, तो तफक्कुर होता है, बिल्कुल आजाद होता है, सिकंदर की तरह कहते हैं हाथ बाहर ही निकाल दो, दोनों बड़े मजे में जा रहा हूं, कोई फिक्र ही नहीं मुझे। तो ये कि महरूम इतनी है भाई कि अगर इस दुनिया में ये चीज नहीं मिली, फला चीज मिली, ये हमारा ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, हमारी फला ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, फला ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, अल्लाह ताला ये महरूमित क्या हुई कि तुम मेरी देन है, अपनी हिकमतों से लोगों को देता हूं, सुभान अल्लाह, किसी को नहीं दे रहा मेरी हिकमत है, टापड़ा ना करे, बल्कि क्या महरूम नहीं है तू अगर अल्लाह का जिक्र कर रहेगा, सुभान अल्लाह। क्यों कि महरूमियत असल क्या है, महरूमियत असल क्या है, हदीस में पता चलेगा कि महरूमियत असल तो यह है कि जिस वक्त तू मरे तो तेरा हालत बहुत खराब, खबर में अजाब शुरू हो, हशर के मैदान में सख्ती हो, घसीटा जाए, अंधेरों में जाए, सख्त हिसाब हो, पुलिस साथ से गुजरना महाल हो, इसको कहते हैं महरूमियत, इसको दायमी है। फिर उसके बाद थके दे के जहन्नुम में फेंक दिया जाए, तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह, मैं तो हकीकती महरूमियत की बात कर रहा हूं, सुभान अल्लाह, हकीकती महरूमियत की बात कर रहा हूं। ये महरूमियत नहीं है जिसको हम समझते हैं कि ये चीज नहीं मिली तो महरूमियत, महरूम तो वो शख्स हो जो कल चल कब इन हालात से गुजरेगा, जब उसके हालात उसके सामने बहुत जल्दी पेश होंगे, तो उस वक्त इंसान को पता चलेगा यार मैंने तो बहुत गलत काम किया, ये मेरे साथ क्या हो गया, ना कोई बचाने वाला, ना कोई पुरसाने हाल, ना कोई सिफारिश, ना कोई लेना, ना कोई देना, असल महरूम तो वो हो गया। फिर तो अल्लाह ताला कहता है कि जिक्र करने वाले वहां महरूम नहीं रहेंगे, वहां उनकी शान बड़ी बुलंद होगी। और जिसके बारे में हम समझ रहे कि हम महरूम हो रहे हैं जिक्र करके, नहीं, उसकी सुने हदीस अस्फात में तो जहा की हदीस है, बहुत कम हदीस है, लेकिन दुनिया में हदीस है उनकी, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मत के सबसे बदतरीन इंसान कौन है, अब ये देख लो, जिसकी वजह से हम अपने आप को महरूम समझ रहे हैं। अब सुने अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे बदतरीन इंसान कौन है, बताओ क्या क्या मसमून आ रहा हो जो बदतरीन, कि मेरी उम्मत के सबसे बदतरीन इंसान हुआ कौन से, कि जो उमदा खाना खाते हैं, अच्छे लिबास पहनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बस ये हमारे ये बात हो गई, ये कोठियां बन गई, हमारा फला होने वाला है, मेरे एक बेटा ये है, मेरा दूसरा बेटा ये है, मेरा तीसरा बेटा ये है, फला ये हो गया, फला ये हो गया, इसको कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, उमदा उमदा खाने वाले लोग, अच्छे अच्छे लिबास पहनने वाले लोग, हदीस के लफ्ज़ ये बदतरीन लोग हैं। क्यों कि इन तमाम चीजों के बाद असल चीज जो वो क्या है, ला दीन है, दीन इनके पास नहीं है, और यही चीज महरूम दीन करती है इंसान को। तो इन चक्करों में पड़ जाते हैं, लंबे लंबे मकान, लंबी लंबी चीजें, और ये ख्वाहिशात, लंबे लंबे खानों की ख्वाहिशात, लंबे लंबे लिबासों की ख्वाहिशात जब इंसान में जन्म लेती हैं, तो हदीस इशारा फरमाता है वो क्या हो जाता है, इंसान ला दीन हो जाता है, उसको भी नमाजों की फिक्र नहीं है, दुकान से नहीं निकलेगा, अजान हो जाए, या तो बहुत ही नमाज पढ़ने वाला होगा, बहुत ज्यादा जोर लग गया होगा, जमात ने आगे कुछ काम कर दिया होगा, तो फिर वही खड़ा हो जाएगा गांव के साथ ही, टूटी फूटी जनाब नमाज पढ़ लिया, सामने मस्जिद हो गई, ना उसको जमात का ख्याल होगा, ना मासूम ख्याल होगा, ना सदकात का ख्याल होगा, ना ज़कात का ख्याल होगा, ना अपने फ़राइज़ का ख्याल होगा। लेकिन बात क्या होगी, लंबी लंबी बातें होंगी, लंबी लंबी चीज़ें होंगी, लंबे लंबे मंसूबे होंगे, अब जाएंगे तो हम ये ज़मीन ले लेंगे, अब जाएंगे तो हम ये ज़मीन लेंगे। आज भी दुनिया में ऐसे मौजूद हैं कि जिनकी दौलतों का आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, इतना लूटा है माल उन्होंने, लेकिन आज भी वो सेटिस्फाई नहीं है। ये क्या बात है। तो असल महरूम तो ये है जिसको हम, जिसकी वजह से हम कहते हैं हम महरूम हो गए, हमारे पास ये नहीं है, देखो उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं, उसके पास ये है। अल्लाह नहीं फरमाते, बदतरीन इंसान है ये, इन्होंने अपनी जिंदगी किस में ज़ाय कर दी, इलादीन है, इनमें ना वो दीन ही नहीं है, वो शौक ही नहीं है। अगर आदत पड़ गई थोड़ी बहुत इधर करने की दीन की तो चल रहे हैं, लेकिन असल जो है दीन का रूह उनके अंदर मौजूद नहीं है। हाँ, अल्लाह का जिक्र जो करता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र जो करता है वो महरूम नहीं है, वो महरूम नहीं, उसकी गारंटी अल्लाह पाक देते हैं कि चाहे ये चीजें उसके पास नहीं है लेकिन वो महरूम नहीं होगा। क्यों? सुभान अल्लाह, हर अजाबों से अल्लाह का जिक्र उसको निकालता चला जाएगा, रुकावट ही नहीं होगी उसके पास। मौत आसान, कब्र जन्नत, जन्नत का टुकड़ा बन गया, क्यारी बन गई। इंतजार हशर बहुत आसान, हशर में जब 50,000 साल का साल होगा उसके लिए एक चुटकी के बराबर होगा। सुभान अल्लाह, वो कहे कौन सा 50,000 साल, तुम कैसे आ गए इतने सालों पर तुम्हारा इंतजार, देरों में सीनों साथ, तो हमें तो पता नहीं चला कैसे निकला, ना पुरुष रात का पता, ना किसी चीज का पता, पर सामने उनको जन्नत नजर आएगी, उदखुल जन्ना। तो ये कंपेरिजन हमें नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग जो है वो कभी महरूम नहीं रहते, अल्लाह के इस जिक्र से मोहब्बत पैदा करनी चाहिए हमें, और सिर्फ जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, और अल्लाह के पता नहीं क्या हिकमत है उसमें, अल्लाह ने बस दो टाइम का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने नमाज 5 टाइम की है कि 5 टाइम नमाज पढ़ो, है ना, लेकिन जिक्र के लिए सिर्फ 2 टाइम दिए है, उनकी पाबंदी करो। कौन से है? बकर तौसीर, सुबह का वक्त और शाम का। सुबह चढ़ रही हो, अल्लाह की रहमत निकल रही हो, वो बंदा बैठा मेरा जिक्र कर रहा हो, शाम जा रही हो, अंधेरे छा रहे हो, सूरज छुप रहा हो, न जाने कल क्या हालात हो, तो बंदा उस दिन को अलविदा किससे कर रहा है? जिक्र से कर रहा है, इब्तिदा भी तेरे नाम से, इंतहा भी तेरे नाम से। तो इसके बुजुर्ग बड़े जी मिसाल दी है सुभान अल्लाह, कि तो बिल्कुल ऐसी है, इंसान की जिंदगी का जैसे इब्तिदा होता है तो वो भी अल्लाह के जिक्र के साथ होता है, कानों में अजान दी जाती है सुभान अल्लाह। तो फरमाया जो सारी जिंदगी भी इस मामूल पर रहता है उसके जो एंड होता है वो भी ऐसे होता है कि उसकी कानों में अजान दी जाती है, वो अल्लाह अल्लाह करते दुनिया से चला जाता है। जिस तरह उसकी आदत है कि सुबह की सूरज अल्लाह के जिक्र से तुलू करता था, शाम का गुरूब करता था, जब इसका जिंदगी का गुरूब होता है तो वो भी अल्लाह के जिक्र के साथ होता है। तो कम से कम हमें इसकी पाबंदी करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह और शाम मजालिस जिक्र में शामिल हों और अल्लाह के जिक्र को पाबंदी के साथ करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته بأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطنا وعملنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان و ودخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقضى حاجاتنا يا رافي البلايات اتبع بلاياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا
ایک خاتون ہے برمنگھم میں سخت بیمار ہیں, ان کی بیٹی نے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل آج نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت نصیب فرمائے.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربهما كما ربياني صغيرا اللهم ربهما كما ربياني صغيرا اللهم ربهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.